नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण विधेयक को देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताया। राष्ट्रीय राजधानी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला बाइक यात्रा और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित किए। दिल्ली के रोहिणी इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग से 3 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार 20 आधुनिक जेरियाट्रिक एम्बुलेंस शुरू करेगी। वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय जरूरतों पर विशेष ध्यान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण विधेयक को देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरगामी पहल बताया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश आशा भरी निगाहों से इस महत्वपूर्ण विधेयक की ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री ने ये बात आज आंध्र प्रदेश में तिरुपति दौरे के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है।
वुमेन रिजर्वेशन, ये बिल जिससे विधानसभा में पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका ये निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित महिला बाइक यात्रा और जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सचदेवा ने कहा कि ये समाज में महिलाओं के बीच बढ़ती जागरूकता को दिखाता है, क्योंकि सभी महिलाएं इस अधिनियम का स्वागत कर रही हैं।
ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय कल हम संसद के पटल पर देखेंगे, जब हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को, देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिलेगा। अब बात नहीं होगी, अब अधिकार मिलेगा और उस ऐतिहासिक पल का हम इंतजार कर रहे हैं।
चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी इस यात्रा में शामिल हुए। श्री खंडेलवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता मिली है।
प्रधानमंत्री जी इस बात के लिए कमिटेड हैं और उनका विजन है कि राजनीति में महिलाओं की सहभागिता बढ़े, और उस नाते से अब फाइनली महिला आरक्षण पर चर्चा होने वाली है और उसी अनुपात में डिलिमिटेशन पर भी चर्चा होगी। तो निश्चित रूप से संसद का ये सत्र ऐतिहासिक होने वाला है और ये 3 दिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के इतिहास में दर्ज किए जाएंगे।
युवा कार्य और खेल मंत्रालय इस सप्ताह राष्ट्रव्यापी नारी शक्ति वंदन दौड़ का आयोजन करेगा। नारी शक्ति वंदन विषय पर आधारित ये आयोजन शुक्रवार को पटना और जयपुर में, जबकि शनिवार को दिल्ली, कटक, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच केंद्र सरकार ने देश भर में घरेलू एलपीजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि काला बाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं।
ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को रोकने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया जा रहा है। सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप किए जा चुके हैं और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। कल लगभग 2100 रेड और सरप्राइज इंस्पेक्शंस की गई हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी इम्पोज की है और लगभग 58 LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है।
दिल्ली सरकार एलपीजी सिलेंडर पर कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार ने अब तक 540 से अधिक छापेमारी की है। इनमें 2000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए गए हैं और 44 FIR दर्ज की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार ने ये कार्रवाई की है।
वर्तमान वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों के बावजूद राजधानी में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, स्थिर और पर्याप्त बनी हुई है। दिल्ली सरकार के अनुसार राजधानी की सभी गैस एजेंसियों और बॉटलिंग प्लांट्स पर एलपीजी सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और निर्बाध तरीके से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा प्रतिदिन लगभग 1,25,000 एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी की जा रही है, जो सामान्य मांग के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े मिले इसके लिए आपूर्ति व्यवस्था की निरंतर निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि क्षेत्रीय अधिकारियों के सहयोग से विशेष शिविर और आउटरीच अभियान संचालित किए जा रहे हैं, साथ ही फ्री ट्रेड एलपीजी योजना के अंतर्गत 5 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर प्रवासी श्रमिकों के लिए गैस एजेंसियों पर उपलब्ध कराए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही 20 आधुनिक जेरियाट्रिक एम्बुलेंस शुरू करेगी। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन एम्बुलेंस का निर्माण विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि सभी एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधाओं से पूर्ण होंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी सेंट्रलाइज्ड एक्सीडेंट और ट्रॉमा सर्विसेज अपने केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष टोल फ्री नंबर 102 के जरिए राजधानी में 331 एम्बुलेंस का संचालन कर रही है, जो 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली के साथ भी जुड़ा हुआ है। साथ ही 20 जेरियाट्रिक एम्बुलेंस के जुड़ने के बाद दिल्ली में कुल एम्बुलेंस की संख्या बढ़कर 351 हो जाएगी। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने आज मुकरबा चौक अंडरपास पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि यहां पर हर दिन भारी ट्रैफिक रहता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इस दौरान उन्होंने साइट का निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा भी लिया। लोक निर्माण मंत्री ने आज बुराड़ी क्षेत्र में नालों की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मॉनसून से पहले जलभराव की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए समयबद्ध योजना के तहत तेजी से काम किया जा रहा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज एयर पॉल्यूशन मिटिगेशन एक्शन प्लान 2026 से जुड़े मुद्दों की बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमआरएस मशीनों और फव्वारा सिंचाई प्रणाली की संख्या बढ़ाने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर राजधानी के विद्यालयों और अस्पतालों में सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। ये आयोजन अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक आयोजित अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत किया गया है। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सभी विद्यार्थियों से अपने परिवार और समाज में फायर सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैलाने का भी आह्वान किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अर्बन चैलेंज फंड कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। नई दिल्ली में श्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शहरों को आत्मनिर्भर बनाना, उनका राजस्व बढ़ाना और विकास परियोजनाओं में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना है। उन्होंने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड मिशन अवधि के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा।
जो कार्यक्रम होते थे उसमें केंद्र की ओर से कुछ टेक्निकल सहायता, कुछ उसमें टेक्नोलॉजी की बातें और कुछ ग्रांट्स ये दी जाती थी और शेष देशों पर छोड़ दिया जाता था अथवा स्थानीय निकाय पर छोड़ा जाता था। लेकिन आज अर्बन चैलेंज फंड एक नए प्रकार का कार्यक्रम जिसमें न केवल सहायता दी जाएगी, न केवल आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा, न केवल नई टेक्नोलॉजी बताई जाएगी, बल्कि फाइनेंशियल दृष्टि से भी हमारी इकाइयां अर्बन लोकल बॉडीज किस प्रकार से वो सक्षम बने और जन भागीदारी के रूप में इन सब को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसके ऊपर पूरा जोर दिया गया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की मुख्य पहलों और विकास कार्यों की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को कचरा प्रबंधन को कुशल बनाने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सुविधाजनक समाधान विकसित करने तथा सड़कों की समय पर मरम्मत करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
बोर्ड ने बताया कि कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 93.70% रहा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.04% अधिक है। इस वर्ष भी लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 94.99% है। छात्र अपने परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.cbse.nic.in और cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। आधिकारिक पोर्टल के अलावा परिणाम डिजीलॉकर और उमंग ऐप जैसे वैकल्पिक प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध हैं। बोर्ड ने बताया कि परिणाम संबंधित विद्यालयों को उनके पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से भेज दिए गए हैं। विष्णु की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में सफल होने वाले राजधानी के सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आज राजधानी के विद्यार्थियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी इलाके में आज तड़के झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाने में करीब 3 घंटे लग गए। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में जालंधर और फगवाड़ा में लवली ग्रुप के कई परिसरों पर आज छापेमारी की। आम आदमी पार्टी के सांसद अशोक मित्तल इस ग्रुप के प्रमुख हैं। उन्हें हाल ही में राज्यसभा में पार्टी का उपनेता बनाया गया है। श्री मित्तल और उनके रिश्तेदारों के आवासीय परिसरों तथा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सहित कई स्थानों पर छापेमारी की गई है। निदेशालय विदेशी विनियम में प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत ये कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि शिक्षण संस्थान ऐसे व्यक्तित्वों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो आगे चलकर सार्वजनिक जीवन, प्रशासन और बौद्धिक क्षेत्रों में सार्थक योगदान देते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात आज दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड में आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान कही। श्री गुप्ता ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ व्यक्ति के विवेक को विकसित करना और उसे समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक विज्ञापन का खंडन किया है। इसमें प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए के कर्ज दिए जाने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और सरकार द्वारा ऐसी किसी भी योजना का समर्थन नहीं किया जा रहा है। दिल्ली सचिवालय में आज बंगाल दिवस के अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध रवींद्र नाट्यम, रवींद्र संगीत, बाउल संगीत, झुमैर नृत्य और धुनुची नृत्य के जरिए ढाक की थाप पर दुर्गा स्तुति तथा मनमोहक प्रस्तुतियों का दर्शकों ने आनंद लिया। इस आयोजन में लगभग 22 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बोहाग बिहू और विशु के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बोहाग बिहू का ये जीवंत त्यौहार हर घर में खुशियां, समृद्धि और नई ऊर्जा लेकर आए। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा और तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला आरक्षण विधेयक को देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरगामी कदम बताया। राष्ट्रीय राजधानी में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला बाइक यात्रा और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में 93% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। लड़कियों ने फिर से लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग से 3 लोगों की मौत और दिल्ली सरकार जल्द ही 20 आधुनिक जेरियाट्रिक एम्बुलेंस शुरू करेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।